दोस्तों, मैं टेनेसी में एक घर बनाने वाली साइट पर अचानक पहुंचा और पाया कि इनमें से लगभग सभी घर एक निवेशक ने खरीदे थे। और यह निवेशक अब इन घरों को किराए पर देने की कोशिश कर रहा है। इनका काम अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि ये अगले 3 महीनों में बनकर तैयार हो जाएंगे। और निवेशक ने इन्हें पहले ही जिलों पर 2,500 प्रति महीने के किराए पर दे दिया है। ये सब बहुत ही अजीब हो रहा है। और दोस्तों, इसे देखिए, आप और भी ऐसे घर देख सकते हैं जो अभी अभी बने हैं और इन घरों में अभी कोई नहीं रह रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 ड्राइववे में कोई कार नहीं है, सड़क पर एक भी व्यक्ति नहीं है। और फिर हम दूसरी तरफ जाते हैं और हमें और भी निर्माणाधीन घर दिखाई देते हैं। और यह संकेत है कि वॉल स्ट्रीट के मकान मालिक अभी भी अमेरिकी हाउसिंग मार्केट में हिस्सेदारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन घरों की मालिक कंपनी का नाम पाथवे है और वे रेंट टू ओन नाम की एक चीज करते हैं। और रेंट टू ओन मॉडल से आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि यह संकेत है कि हाउसिंग मार्केट में बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। और वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि आप मेरे पीछे वाले घर के लिए 3 साल का लीज साइन करवा लें और फिर 3 साल के बाद वो आपको इसे खरीदने का मौका देंगे। जो कि मजेदार है, क्योंकि आज घर खरीदने वाले निवेशकों ने इसे खरीदने का आपका मौका छीन लिया है। तो वो आज इसे खरीद रहे हैं, आपको 3 साल के लिए किराए पर दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं, अरे शायद आप इसे 3 साल बाद खरीद पाएंगे। ये मेरे लिए वाकई दिलचस्प है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट के ये निवेशक भ्रमित करने वाले हैं। हाउसिंग मार्केट में उनकी कुल खरीदारी वास्तव में लगभग 50 या 60% तक गिर गई है। फिर भी मैं उन्हें घर बनाने वाली साइटों पर बार बार आते देखता हूँ। मैं अभी टेनेसी में एक रोड ट्रिप पर हूँ और मैं इन निवेशकों को बिल्डरों से घर खरीदते हुए देखता हूँ। और मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बिल्डरों को इन घरों को आसमान छूती कीमतों पर बेचने में परेशानी हो रही है। बिल्डरों के पास बहुत ज्यादा घर हैं और आम लोग घर नहीं खरीद सकते। तो फिर बिल्डर किसे घर बेचते हैं ताकि वो पैसे कमाते रहें और घर बनाते रहें? वो निवेशकों को घर बेचते हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों को इस बात का एहसास है कि अमेरिका में इस समय कितने घर निर्माणाधीन हैं। जनगणना ब्यूरो की नई गृह निर्माण रिपोर्ट अभी अभी आई है, जिसमें बिल्डरों द्वारा बिक्री के लिए 500,000 सक्रिय घरों का पता चला है। ये बिल्डरों द्वारा बिक्री के लिए रखे गए घरों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले केवल 2 साल की अवधि में बिल्डरों द्वारा बिक्री के लिए इतने सारे घर देखे गए थे, 2006 से 2008 तक। तो हर कोई यह समझ ले कि अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में टेनेसी, जॉर्जिया, फ्लोरिडा और टेक्सास में हाउसिंग मार्केट एक बड़े बुलबुले में है। हम अभी एक बड़े हाउसिंग बुलबुले में हैं और मैं आपको अपनी आंखों से इन्वेंट्री दिखा रहा हूं। और बिल्डरों और निवेशकों को बुलबुले को बनाए रखने के लिए और अधिक रचनात्मक और अधिक हताश होना पड़ रहा है, ताकि कीमतों में गिरावट ना हो। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि वे इसे कब तक बनाए रख सकते हैं, क्योंकि जब मैं डेटा देखता हूं तो डेटा अकाट्य होता जा रहा है कि हम विशेष रूप से दक्षिण में हाउसिंग मंदी में हैं। बिक्री के लिए घरों की इन्वेंट्री बहुत बढ़ गई है, कीमतों में काफी कटौती हुई है, कीमतें गिरने लगी हैं, लेकिन इतनी नहीं कि उतनी गिरें। अगर आप इस समुदाय में बिक्री के लिए रखे गए घरों को देखें जो निवेशकों को नहीं बेचे गए, तो 3 बेडरूम और 800 वर्ग फीट के घर की कीमत करीब $450,000 है। मैंने इनमें से एक घर देखा और वो ठीक ठाक है, लेकिन लोगों की आमदनी और लोगों की क्षमता के हिसाब से उसकी कीमत शायद $75,000 ज्यादा है। और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्डर हर संभव कोशिश कर रहे हैं, निवेशक कीमतों और किराए में कटौती से बचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मेरा मतलब है, मुझे आश्चर्य है कि टेनेसी के मर्फी जबोरों में बाजार में किराए का क्या होगा, क्योंकि इस निवेशक ने अब इनमें से 15 घरों को किराए पर देने का फैसला किया है। मैंने यहाँ आते समय फ्लोरिडा में भी ऐसा ही कुछ देखा था। वहाँ एक और घर बनाने वाला समुदाय था जहाँ किराए पर घर दिया जाता था। और असल में मजेदार बात यह है कि इस समुदाय में एक और वॉल स्ट्रीट निवेशक है जो मेन स्ट्रीट रिन्यूअल नाम से एक प्रॉपर्टी का मालिक है। उनके पास किराए के लिए एक प्रॉपर्टी है। जैसे कि उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा है कि एक और निवेशक आया और उसने और भी घर बाजार में उतार दिए। और फिर से यह एक दिलचस्प और जटिल कहानी है। मैं आपको इस समुदाय में घर खरीदने वाले निवेशकों को दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप समग्र डेटा देखते हैं तो निवेशक वास्तव में कुल मिलाकर खरीदारी नहीं कर रहे हैं। निवेशकों की खरीदारी चरम से 60% कम हो गई है। ऑरलैंडो जैसे बाजार में ये लगभग 80% कम हो गई है। ऑरलैंडो में निवेशकों की खरीदारी अब 10 साल में सबसे कम स्तर पर है। मियामी में निवेशकों की खरीदारी लगभग 60 से 70% कम हो गई है। मेरा मतलब है, इन ग्राफ को देखें, मियामी को देखें, हर कोई। हम निवेशकों की खरीदारी में भारी उछाल से निवेशक खरीद में भारी गिरावट तक पहुंच गए हैं। अटलांटा जैसे बाजार में भी यही बात है। रेडफिन के डेटा के अनुसार अटलांटा में निवेशक अब खरीदारी नहीं कर रहे हैं, और इसलिए वे वास्तव में जो कर रहे हैं वे विशेष रूप से घर बनाने वाले समुदायों में खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि यही निवेशकों को छूट मिल सकती है। वे थोक में 15 घर खरीद सकते हैं। बिल्डर उन्हें छूट देता है और इससे उनके नकदी प्रवाह का संचालन चलता रहता है। आप जानते हैं, यह मजेदार है, हर कोई। मैं यहाँ दूसरी सड़क पर मुड़ रहा हूँ। जाहिर है इनमें से कुछ घर बिक चुके हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इनमें से अधिकांश घरों के ड्राइववे में अभी भी लगभग कोई कार नहीं है। मेरा मतलब है, इसे देखो, यहाँ ड्राइववे में कोई कार नहीं है, वहाँ ड्राइववे में बहुत कम कारें हैं। मेरा मतलब है, इनमें से बहुत से घर बनाने वाली जगहें भूतिया शहर हैं, और मेरे लिए ये 2007 की याद दिलाता है। हम 2007 के अंत की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी की समय अवधि अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत समान है, लेकिन फिर भी डेटा यही कह रहा है, क्योंकि वह आखिरी बार था जब हमारे पास घर बनाने वालों की इतनी सारी इन्वेंट्री थी। पिछली बार निवेशकों की खरीद में इतनी गिरावट 06-07 में आई थी। ये दोनों ही हाउसिंग मार्केट में मंदी के प्रमुख संकेतक थे, लेकिन आजकल मार्केट में कुछ सुस्ती दिख रही है, जहां विक्रेता कीमतों में कटौती नहीं करना चाहते हैं, है ना? जैसे इन्वेंट्री बढ़ रही है, मार्केट में बिक्री के दिन बढ़ रहे हैं, मंदी आने के सभी संकेत मौजूद हैं, फिर भी विक्रेता इतने प्रतिरोध में हैं। और मैं कभी कभी रेडिट हाउसिंग मार्केट चैनल पर देखता हूँ, और मुझे घर के मालिक पोस्ट करते हुए दिखाई देते हैं कि उनका घर क्यों नहीं बिक रहा है, और वे कहते हैं, हे भगवान, मैं अपने घर में 510,000 में रहा, और यह प्रतिस्पर्धियों से भी कम है, लेकिन फिर ये 3 महीने से मार्केट में है और कोई बोली नहीं लगी है, और वे कहते हैं, क्या हो रहा है? और मैं रेडिट पर घर के मालिकों की पोस्ट पर पोस्ट देखता हूँ, जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका घर क्यों नहीं बिक रहा है, और उनमें से ज्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि यह कीमत है। जैसे आप जानते ही हैं, आप अपने घर को ज्यादा कीमत पर बेच रहे हैं। इनमें से ज्यादातर विक्रेता अब भी यही सोचते हैं कि उनका घर उतने ही दाम का है जितने में उनके पड़ोसी ने उसे 3 साल पहले बेचा था, जबकि ऐसा नहीं है। बाजार में बिक्री की कीमत उससे काफी कम है जितना कि ज्यादातर विक्रेता मानना चाहते हैं। इसलिए इस समय हाउसिंग बाजार एक दिलचस्प स्थिति में है, जहां सारा माल बाजार में पड़ा हुआ है और कुछ खास हो नहीं रहा है। खरीदारों की मांग वाकई कम है और विक्रेता कीमतों में धीरे धीरे कटौती कर रहे हैं, लेकिन इतनी नहीं कि खरीदारों की मांग फिर से वापस आ जाए। इसलिए इस समय बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है, और बाजार में जान डालने के लिए विक्रेताओं को कीमतों में कटौती करनी होगी, क्योंकि खरीदार वापस नहीं आ रहे हैं। आप जानते ही हैं, मैंने आप लोगों को अपने चैनल पर कई बार बुलाया है और आपसे घर खरीदने के बारे में सवाल पूछे हैं। घर खरीदने के लिए आपको क्या करना होगा? मेरा मतलब है, मैंने 1 महीने पहले आप लोगों से बात की थी और आप में से 58% ने कहा था कि गिरवी दरों में कोई गिरावट नहीं होगी जिससे आप घर खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। आपको कम कीमतों की जरूरत है, इस बारे में सोचें। आप में से 34% ने कहा कि आपको गिरवी दरों को 4% तक कम करने की जरूरत है, जबकि आप में से केवल 8-9% ने कहा कि 5-6% की गिरवी दर आपको घर खरीदने के लिए प्रेरित करेगी, और इसलिए खरीदार पक्ष में बहुत अधिक जड़ता है। और मैं इसे यूं ही कहूंगा, आप जानते हैं, तथ्य ये है कि लोग इन कीमतों पर घर खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते, और इसलिए मांग बहुत कम हो गई है, लेकिन विक्रेताओं को धीरे धीरे इसका एहसास होने लगा है, और हम कुछ राज्यों में कीमतों में गिरावट देख रहे हैं। फ्लोरिडा में कीमतें कम हो गई हैं, टेक्सास में वे कम हो गई हैं, एरिजोना में वे कम हो गई हैं, वे टेनेसी में भी कम होने वाली हैं। यहाँ मध्य टेनेसी में घरों की सूची पूरी तरह से विस्फोटक हो रही है। ओह, मैं असल में मर्फीज़बोरो के इस इलाके में पहले रेवेंचर ऐप पर देख रहा था, जो नैशविले से करीब 30 मिनट दक्षिण पूर्व में है। इनमें से ज्यादातर जिप कोड में इन्वेंट्री साल दर साल 50% ज्यादा है। इस बारे में सोचिए, इसका मतलब है कि अगर पिछले साल जिप कोड में हमारे पास बिक्री के लिए 100 घर थे, तो अब हमारे पास 150 हैं, और यह सिर्फ रीसेलर इन्वेंट्री है। इसमें निर्माणाधीन नए बिल्डर के घर भी शामिल नहीं हैं। तो हालांकि आप जानते हैं, उस निवेशक ने उन 15 घरों को बाजार से हटा लिया, फिर भी बाजार में बहुत सारे घर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिक्री के लिए कुछ और घर उपलब्ध हैं। इस बिल्डर का नाम LGI है। मैं इस बिल्डर से मिलता रहता हूँ। मैंने उन्हें फ्लोरिडा में देखा था। मैं उन्हें यहाँ टेनेसी में देख रहा हूँ। ओह, वे बहुत सारे घर बना रहे हैं। उनके पास हर जगह बहुत सारी इन्वेंट्री है। वो घर उपलब्ध है। वो घर बिक गया। वो घर उपलब्ध है। और फिर से इन घरों की कीमत इस तरह से बताई गई है, जैसे मुझे लगता है कि सबसे सस्ता घर 380-390 के आसपास है और ये 480 के आसपास तक जाते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि 380 से 490 की कीमत पर आप शहर के बीचों बीच किसी अच्छी जगह पर घर खरीद सकते थे, और पहले आप 380 में घर खरीद सकते थे। अब 380 में घर खरीदने के लिए, जो कि ठीक ठाक है, आपको शहर से 40 मिनट की दूरी पर जाना होगा। मुझे लगता है कि यह एक बड़ा बदलाव है। जैसे कि अमेरिका के कुछ हिस्सों में ऐसे घर हैं जिन्हें हम छद्म रूप से किफायती कह सकते हैं, लेकिन वे हमेशा शहर से बहुत दूर किसी ऐसे इलाके में होते हैं जहां आपको बस 40 मिनट ड्राइव करके जाना पड़ता है। अगर ट्रैफिक हो तो 1 घंटा लग जाएगा। और इसलिए मुझे लगता है कि बिल्डरों के साथ एक और समस्या यह है कि वे ये सारे घर दक्षिणी राज्यों में दूर दराज के इलाकों में बनाते हैं। मुख्य इलाकों में ज्यादा घर नहीं बन रहे हैं जहां लोग खरीदना चाहते हैं। और एक चीज जो मेरे लिए वाकई दिलचस्प थी, वो थी नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स की हालिया होम सेल रिपोर्ट। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पर ध्यान दें। नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स ने बताया कि फरवरी 2025 में सालाना 4.26 मिलियन होम सेल हुए। इसका मतलब है कि अगर आप फरवरी की बिक्री गतिविधि को 12 से गुना करें और सीजन के हिसाब से सालाना देखें, तो यह एक साल में 4.26 मिलियन सेल होंगे। अगर हम फरवरी की गति को देखें, तो यह 14 साल में फरवरी का सबसे निचला स्तर था। हालांकि, इस आंकड़ों में क्षेत्रीय स्तर पर काफी भिन्नता थी। अगर आप नॉर्थ ईस्ट और मिडवेस्ट में जाएं और नॉर्थ ईस्ट और मिडवेस्ट में महंगे घरों को देखें, तो नॉर्थ ईस्ट और मिडवेस्ट में मिलियन डॉलर से ज्यादा कीमत वाले घरों की बिक्री साल दर साल 10 से 30% तक बढ़ी है। हालांकि, अगर आप दक्षिण में देखें, तो उन्हें किफायती कीमत वाले घरों की बिक्री काफी कम हुई है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि हाउसिंग मार्केट में एक बड़ा विभाजन हो रहा है, जहां उत्तर पूर्व और मध्य पश्चिम के अमीर लोग बिक्री का समर्थन कर रहे हैं, जबकि देश के अधिकांश अन्य हिस्सों में संघर्ष जारी है। मांग वास्तव में कम है और यह कुछ खास जगहों पर भी है। मैं डलास में एक दोस्त से बात कर रहा था और वह मुझे बता रहा था कि जिस इलाके में वह घर खरीदना चाहता था, वहां बोली लगाने की होड़ मची हुई है। उसने मुझे मैसेज किया कि उसके रियल एस्टेट एजेंट ने क्या कहा और उसने कहा, ओह, हमें फिर से कई ऑफर मिल रहे हैं। और इसलिए आप कहते हैं, ये कैसे संभव है कि डलास जैसे बाजार में जहां इन्वेंट्री आसमान छू रही है, कीमतें गिर रही हैं, ये कैसे संभव है कि बाजार के कुछ हिस्सों में अभी भी बोली लगाने की होड़ मची हुई है? और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम स्थानीय स्तर पर देख रहे हैं कि अच्छे स्कूल जिलों और उच्च आय वाले पड़ोस या शायद ऐसे पड़ोस जो उच्च आय वाले होते जा रहे हैं और वास्तव में बड़े पैमाने पर सभ्यताकरण के कगार पर हैं। ऐसे घरों की मांग अभी भी बहुत ज्यादा है, जो परिवार और घराने ऐसे हैं जिनके पास पैसा है और जो इस आर्थिक मंदी को महसूस नहीं कर रहे हैं। इसलिए अभी भी उन घरों के लिए बोली लगाने की होड़ मची हुई है जिनकी कीमतें अच्छी हैं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी इसे याद रखें, क्योंकि अब हम बसंत ऋतु में हैं और हम साल के उस मौसमी समय में हैं जहां घरों की खरीद फरोख्त ज्यादा होती है। आप देखेंगे कि रियल एस्टेट एजेंट ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ओह, हम फिर से चरम मांग पर हैं, अभी बहुत से लोग घर खरीदना चाहते हैं। आप देखेंगे कि रियल एस्टेट एजेंट ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको आज ही घर खरीदना चाहिए, क्योंकि मैं ये सब शो देख रहा हूं, मैं ये सब कई तरह के ऑफर वाली स्थितियां देख रहा हूं। ये समझे कि ये अलग अलग किस्से हैं और व्यापक बाजार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। व्यापक बाजार में भारी मंदी है। मांग 14 साल में सबसे निचले स्तर पर है। निवेशकों ने सामान्य तौर पर खरीदना बंद कर दिया है, भले ही वे कुछ घर बनाने वाली साइटों पर अभी भी खरीद रहे हों। और इन्वेंट्री बहुत बढ़ गई है, इन्वेंट्री आसमान छू रही है। तो ये सभी चीजें भविष्य में संभावित खरीदार के तौर पर आपके लिए अच्छी खबर है। हम अमेरिका के कई हिस्सों में कम कीमतें देखने जा रहे हैं। जिलो जैसी कंपनियां अब अपने पूर्वानुमान भी कम कर रही हैं। इस साल काफी कुछ होने वाला है। जिलो का अनुमान है कि अगले 12 महीनों में 240 महानगरों में कीमतें गिरने वाली हैं। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप लोगों को अपने स्थानीय हाउसिंग मार्केट में चल रही गतिविधियों की जानकारी हो और आप ट्रेंड को समझ सकें। और ऐसा करने के लिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि रेवेंचो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अब हम iOS और एंड्रॉयड पर ऐप स्टोर पर उपलब्ध हैं। और फिर जब आप तैयार हों, तो आप हमारे प्रीमियम प्लान में अपग्रेड कर सकते हैं ताकि आप हमारे होम प्राइस फोकास्ट स्कोर तक पहुंच सकें। ये 0 से 100 तक का स्कोर है जो आपको आपके क्षेत्र में कीमतों की भविष्य की दिशा के साथ साथ ओवरवैल्यूएशन और लॉन्ग टर्म होम प्राइस ग्रोथ पर 40 अन्य प्रीमियम डेटा पॉइंट को समझने में मदद करता है। मैंने रेवेंचो ऐप बनाया है ताकि आप लोगों को हाउसिंग मार्केट की जानकारी मिल सके और आप अधिक जानकारीपूर्ण निर्णय ले सकें। तो इसे अभी ऐप स्टोर से डाउनलोड करें।